Yasodhanandana, श्री श्री कृष्ण बलराम जीव की, श्री श्री गौर निताय जीव की, शील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे श्री चैतन्ना मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगना रघुनाथान्वितं तं सोजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सुन्नवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंध अध्याय 15 श्लोक संख्या 21 पाठ करके श्रवण करेंगे। पंडिता बहवो राजन बहुज्ञा संशय छिदः सदसत्पतयो अप्यके असंतुषा पतंतध। पंडिता बहवो राजन बहुज्ञा संशय छिदः सदसत्पतयो अप्यके असंतोषात् पतन्तध। पंडिता बहवो राजन बहुज्ञा संशयच्छिदः सदसत्पतयो अप्यके असंतोषात् पतन्तध। पंडिता बहवो राजन बहुज्ञा संशयच्छिदः सदसत्पतयो अप्यके असंतोषात् पतन्तध। Yeah. असंतोषापतंतः पंडिता बहवो राजन् बहुव्या संशय पंडिता बहवो राजन् बहुव्या संशयच्छिदा सदसत्पतये असंतोषापतन्तः।
शिल प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। पंडिता विद्वान पंडित, बह बह अनेक, राजन हे राजा युधिष्ठिर, बहुज्ञा अनुभवी व्यक्ति, संशयच्छिदः कानूनी सलाह देने में पटु, सदस्यस्पतयः विद्वत स्वभाव का सभापति चुने जाने योग्य व्यक्ति, एक अवगुण से असंतोष, केवल असंतोष या लालसा के कारण पतंती नीचे गिरते हैं, अधः जीवन के नरक में। हे राजा युधिष्ठिर अनेक अनुभवी व्यक्ति, उनके विधि सलाहकार, अनेक विद्वान तथा विद्वत स्वभाव के सभापति बनने योग्य अनेक व्यक्ति अपने अपने पदों से संतुष्ट न होने के कारण नारकीय जीवन में जा गिरते हैं। तात्पर्य, आध्यात्मिक उन्नति हेतु मनुष्य को भौतिक दृष्टि से संतुष्ट होना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति हेतु मनुष्य को भौतिक दृष्टि से संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना होने पर भौतिक विकास के लालच से उसकी आध्यात्मिक प्रगति अस्त व्यस्त हो जाएगी। ऐसा अगर ना हो, संतोष बना ना रहे, तो उसका आध्यात्मिक प्रगति अस्त व्यस्त हो जाएगी। ऐसी दो बातें हैं जो समस्त सद्गुणों को व्यर्थ कर देती है। एक है विपन्नता या दरिद्रता, एक है दरिद्रता। दरिद्र दोष गुण राशि नाशी, यदि कोई फटेहाल दरिद्र है तो उसके समस्त सद्गुण व्यर्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि कोई अत्यधिक लालची या लोभी हो जाता है तो उसके समस्त सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। अतएव ऐसा तालमेल होना चाहिए कि मनुष्य दरिद्र भी ना हो, किंतु वो जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से तुष्ट होने का प्रयत्न करे तथा लालच ना करे। अतएव आध्यात्मिक उन्नति हेतु भक्त हेतु सर्वश्रेष्ठ सलाह यही है कि वो न्यूनतम आवश्यकताओं से तुष्ट रहे। फलस्वरूप भक्ति में पारंगत विद्वान सलाह देते हैं कि मंदिरों तथा मठों की संख्या बढ़ाने की चेष्टा ना की जाए। ऐसे कार्य केवल ये भक्त कर सकते हैं जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अग्रसर करने में अनुभवी है। दक्षिण भारत के सभी आचार्यों ने, विशेषतया श्री रामानुजाचार्य ने, अनेक भव्य मंदिर बनवाए और उत्तर भारत में वृंदावन के सभी गोस्वामियों ने बड़े बड़े मंदिर बनवाए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने भी गौड़ीय मठ नाम से बड़े बड़े केंद्र निर्मित कराए। अतएव मंदिर निर्माण करना बुरा नहीं है, बल्कि जरूरत यह है कि कृष्ण भावनात के प्रसार हेतु सतर्कता बरती जाए। भले ही ऐसे प्रयास लोभपूर्ण माने जाए, किंतु यह लोभ भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करने हेतु है और इसीलिए ये सभी आध्यात्मिक कार्य हैं। तो यही श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य समाप्त। तो श्रीमद् भागवतम में ये जो दो अध्याय, आखिरी 14 और 15 अध्याय, एक गृहस्थ के मोक्ष धर्म का उल्लेख किया जा रहा है। जब युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछे थे कि गृहस्थ का मोक्ष कैसे मिलेगा, गृहस्थ कल्याण कैसे होगा, तो युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के उत्तर में दो अध्याय में कि गृहस्थ का जो मैटर है, ये बहुत बड़ा मैटर है, तो इसको संक्षेप ना कहकर विस्तार से इसको वर्णन किए। और श्रीमद् भागवत में 10 विषयों का वर्णन है। 10 विषय श्रीमद् भागवत में, सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम उतय मन्वंतरे ईशानुकथा निरोध मुक्तिर आश्रय, ये 10 विध जो लक्षण है श्रीमद् भागवत के अंदर है। तो ये जो सप्तम स्कंध है, ये सप्तम स्कंध में उति विषय का निरूपण किया गया है। उति शब्द का अर्थ है वासना, उति शब्द का अर्थ है वासना। वासना दो ही प्रकार के, एक शुभ वासना एक अशुभ वासना। तो शुभ वासना के प्रतीक है प्रह्लाद महाराज, अशुभ वासना का प्रतीक है हिरण्यकशिपु। तो शुभ वासना आती है महत कृपा से, अशुभ वासना आती है भक्त अपराध से, इसलिए भक्त अपराध से बचना चाहिए। और श्रीमद् भागवत में जो ये भगवत स्वरूप है, श्रीमद् भागवतम जो हम श्रवण करते हैं व अध्ययन करते हैं, ये भगवान के ही स्वरूप है। अगर कोई रोज नित्य नियम से भागवत का पूजन करे, उसका पाठ करे, पारायण करे, तो भगवान साक्षात उसको कृपा करते हैं। श्रीमद् भागवत में पादो जदियो प्रथम द्वितीयो, पादो भागवत जो प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद है, ये भगवान के चरण युगल है। पादो जदियो प्रथम द्वितीयो तृतीय तुर्जो कथितो जदुरु उरु, अर्थात जंघा जो है तृतीय और चतुर्थ स्कंद है। नाभिस्तथा पंचम एव, नाभि है पंचम स्कंध, नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजांतरम दुर्जुगलम तथान्यो, षष्ठ स्कंध है वक्षस्थल और सप्तम और अष्टम जो है ये बाहुजुगल है दुर्जुगल, भुजांतरम दुर्जुगलम तथान्यो, कंठस्तु राजन नवमो, कंठ है नवम स्कंध, और जदियो मुखारविंद दसम स्कंद भगवान के मुखारविंद है। एकादशो जस्य ललाट पट्टम, एकादशो जस्य ललाट है, एकादश स्कंध है भगवान के ललाट। सिरोपि तु द्वादश एव भाति, सिर जो है ये भगवान के द्वादश स्कंध है। तमादि देवम करुणा निधानम, तमादि देवम करुणा निधानम तमाल वर्णम सहितावतारम, तमादि देवम करुणा निधानम तमाल वर्णम सहितावतारम अपार संसार समुद्र हेतुम, अपार संसार समुद्र हेतुम भजा महे भागवत स्वरूपम। अगर कोई संसार समुद्र को पार करना है उसको भागवत का ही शरण ग्रहण करना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं। और भागवत पुराण जो है यह है नाम पुराण, जैसे गीता जहां समाप्त है वहां भागवत शुरुआत है। भागवत गीता का समापन कहां हुआ? सर्वधर्मान परित्यज्य। भागवत का शुरुआत कहां से? द्वितीय श्लोक क्या है? धर्म प्रज्जित कैतवत्र परम, धर्म को त्याग करना पड़ेगा। धर्म प्रज्जित कैतवत्र परमो निर्मल सरानाम सता, वहां अधिकारी वस्तु विषय सब कुछ वर्णन है। और चैतन्य चरितम कहां शुरुआत है? नाम से, जैसे भागवत का समापन नाम से। हाँ, नाम संकीर्तनम जैसे सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामे दुख समनम तम नमामे हरि परम। तो नाम समापन से भागवत का समापन, और चैतन्य चरित में तो नाम से शुरू होता है। चैतन्य चरित में जो है प्रभु के नाम से, नाम चिन्मय है। मंत्र का स्मरण करने से ज्ञान हो सकता है, किंतु नाम जो है ये जीव को चिन्मय बना देते हैं। इसीलिए अगर किसी के जीभा में निरंतर नाम का स्मरण हो रहा है तो निश्चित रूप से उसका शरीर दिव्यता को प्राप्त करेगा। इसलिए अगर समय हाथ में समय नहीं है माला करने का, तो जीभा पे नाम स्मरण होना चाहिए, करना चाहिए। तो पादौ जदियो, यह भागवत का स्वरूप का वर्णन किया। और जो सप्तम स्कंध में जो पंचदश अध्याय है ये अभी उपसंहार चल रहे हैं, जो मोक्ष धर्म का उपसंहार क्या करना चाहिए संक्षेप में सार सार वस्तु बता रहे हैं। तो आज का जो श्लोक है, आज और काल जो श्लोक पाठ हुआ, दोनों श्लोक एक साथ पढ़ना है, एक साथ संबंध है। संबंध इस प्रकार है, असंतुष्ट विप्रश तेजो विद्या तपोजस, इससे 20 लोग नहीं क्या? चाहे इस श्लोक में कामशांतम श्लोक है, किंतु यहाँ उल्लेख नहीं है, देखता हूँ श्लोक में, यहाँ ग्रंथ में 20 श्लोक नहीं है। हाँ जी, है ना, है कामशांतम हि क्षुत्थिड भाम क्रोधस्य एतत् फलोदयात् जनो जाति न लोभस्य जित्त्वा भुक्त्वा दिशोभुः। काम का अंत होता है किसी को भोजन अन्न ना मिले, पान अगर भोजन पान उसको ना दिया जाए उसका काम शांत हो जाएगा, इंद्रिय शिथिल पड़ जाएगा। कामस्य का अंत हो जाएगा अगर उसको अन्न जलादि प्राप्त ना हो। अगर भोजन मिल जाए तो कामना का नाश हो जाएगा, किसी का भूख प्यास है अगर भोजन पर्याप्त मिल गया तो उसका कामना का नाश हो जाएगा। माने उपाय है कि वो इसी व्याधि से मुक्त हो जाएगा। क्षुत्रिधम क्रोधश, क्रोध किसी का अंदर क्रोध है, क्रोध कर रहे तो उसका भी अंत हो जाएगा। किसी में क्रोध प्रकाश कर लो, क्रोध का फल है हिंसा। कोई अगर हिंसा कर ले तो क्रोध का फल है जो हिंसा, कोई हिंसा कर ले तो हिंसा करने के बाद क्रोध शांत हो जाएगा, किंतु लोभ का शांत नहीं होगा। वो सारा दिशाओं को जीतने पर भी, सारा भोग भोगने पर भी उसका लोभ उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाएगा। इसलिए लोभ को किसी प्रकार से शांत करना, इसलिए हम सब जो इस कृष्ण भावना में जो भी हम सब यहाँ प्रभुपाद जी कृपा से आए हैं, प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा है कि हमारे जो अंदर जो असंतोष है इसको नष्ट कर दिया। आप सूक्ष्म रूप से विचार करिए, हमारे अंदर जो असंतोष का भावना रहे इसका धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। कम से कम वस्तु से वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इसका कारण है कि हमारे अंदर जो असंतोष की भावना है वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। अगर श्रील प्रभुपाद जी इस मूवमेंट का यदि प्रचार प्रसार नहीं किया करते तो असंतोष की भावना और मतलब दुनिया में जो मृत्यु की हार, सुसाइड की जो हार रेट, इसको बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने वर्तमान समय के लिए विशेष उपयोगी उनके उनका जो भावना, उनके जो जो असंतोष का आज सबसे बड़ा क्रिमिनल असंतोष के कारण जो सब अपराध कर रहे हैं, एक कारण सबसे बड़ा है असंतोष है, वो किसी प्रकार संतोष नहीं है। ऐसे ऐसे परिवार को मैंने देखा अपने जीवन में, सुबह जाते कमा करके लाते उसी से संतोष, जितना धन मिल जाए उनका एक ही माने एक कारण है कि वो कृष्ण इस्कॉन के भक्त है। सुबह कीर्तन करते हुए जाते, कुछ काम करते, दो चार दस घंटे जो भी काम करके सारा दिन का जो मजूरी है उसको लाकर ठाकुर जी को भोग लगाते और उसी को प्रसाद पाकर सो जाते, फिर सुबह जाते। अगर रोज ना जाए तो उनका माने उस दिन अन्न पाना मुश्किल हो जाएगा। एक ही लक्ष्य, कितना संतोष देखे। संतोष की मैं ये उदाहरण दे रहे हैं कि कोई कृष्ण भावना में तो भावित है उसमें संतोष स्वाभाविक है, और कोई कृष्ण भावना में तो भावित नहीं है तो उसका असंतोष ही बना रहेगा, तो जीवन भर जलते ही रहेगा। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जो सुबह सुबह प्रोग्राम दिया हम सबको, इसको बहुत अच्छा से निर्वाह करना चाहिए। इसी से असंतोष जो दोष है ये नष्ट हो जाएगा, और कोई दूसरा साधन, कोई दूसरा उपाय नहीं है। कर्मी ज्ञानी योगी जो है ये असंतोष है, बलपूर्वक किसी इंद्रिय को दमन कर लेते अगले क्षण फिर वही कष्ट प्रदान करते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में ऐसे कोई माने थोड़ा सा भी कृष्ण भावनामृत अनुसरण करे वो धीरे धीरे से वो खुद अनुभव कर पाएंगे कि मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत संतोष मिल रहा है। जो बाहर के लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते तो उसका बहुत संतोष प्राप्त करते हैं कि नहीं, यहाँ वास्तविक संतोष प्राप्त करने का स्थान है। इसका कारण हरिनाम। तो श्रील प्रभुपाद जी यही लिखते थे आज का श्लोक में कि आध्यात्मिक उन्नति हेतु मनुष्य को भौतिक दृष्टि से संतुष्ट होना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति हेतु मनुष्य को संतुष्ट होना चाहिए। इसलिए गीता में अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो उसका स्पर्धा बढ़ जाएगा, उस दिन दिन आगे चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत माने कठिन परिश्रम करेगा। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं जो संतुष्ट होना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में संतुष्ट व्यक्ति का लक्षण बताया, जिसका मन स्थिर हो गया वो संतुष्ट है। स्थित प्रगृष का भाषा समाधिस्थ केशव स्थित ही किम प्रभाषित किमाशीत ब्रजित किम। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का क्या लक्षण है, कैसे बातें करते हैं, कैसे विचरण करते हैं और कैसे उनकी वाणी कैसे है, ये लक्षण सुना। फिर भगवान आखिरी श्लोक तक इसका उत्तर प्रदान करते हैं। भगवान कहते कि प्रजा हाथ जदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात गुना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तुच्यते। ये है मन को स्थिर करने का सरल उपाय, संतोष रखने का सरल उपाय। मन को हमारे अंदर जो कामनाएं हैं, एक कामना को छोड़ना पड़ेगा। कामनाएं मनुष्य को चंचल कर चंचल बनाते हैं। मन को चंचल बनाने का सरल उपाय है कामना का शिकार करना। अगर कोई काम के शिकार हो गया तो उसका मन चंचल रहेगा। प्रजा इसलिए भगवान कहते पहले काम को मारो। प्रजा भारत जदा कामन सर्वन पार्थ मनोगतान। और काम का उद्भव कहाँ से? मन से, मनोगतान। प्रजा भारत जदा कामन सर्वन पार्थ मनोगतान आत्मनैव आत्मन तुष्ट। भगवान में प्रसन्न रहे आत्मने एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त होते उसके मन स्थिर है। फिर भगवान कहते दुखों में उद्वेग प्राप्त ना करे। दुखेशु अनुद विघ्न मना सुखेशु विगत स्थिर। दुख आने पर उद्वेग प्राप्त ना हो और सुख प्राप्त होने पर भी उसमें विगत स्पृहा कोई उसमें विशेष स्पृहा ना हो, उसको प्राप्त करके खुशी ना होना, उसके विशेष रूप से स्पृहा ना कर विगत स्पृहा। फिर श्लोक कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान ने मन को स्थिर करने का उपाय बताया। दुखे स्वरंद विग्रहण सुखे स्वगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। फिर कहते ज सर्वत्र अनभिस्नेह तत्त प्राप्त शुभाशुभम। अनभिस्न जो घर स्त्री पुत्र कन्या में जो आसक्ति है इसको छोड़ना पड़ेगा। ज सर्वत्र सभी जगह जगहों से अपनी ममता को छोड़ना पड़ेगा। ज सर्वत्र अनभिस्नेह तत्त प्राप्त शुभाशुभम शुभ अशुभ दोनों को छोड़ना पड़ेगा। नाभिनंदति न देष्टि उसमें ना तो अभिनंदन करे ना तो उसमें देश करें। नाभिनंदति नवदेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। और जब भक्त का मन स्थिर हो जाएगा जैसे कोई विषय उपस्थित हो तो मन को इंद्रियों को समेट लेंगे और जिस समय विषय उपस्थित नहीं है उसमें अपना इंद्रियों को छोड़ देंगे। ऐसे करते 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 क्या होगा ना धैतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते। देखिए कहाँ से पतन होता है। हम जब विषय का ये संतोष ना होने से वो विषय का ध्यान करेगा। अगर मन संतोष नहीं है वो क्या करेगा विषय का चिंतन करेगा। आप विषय का चिंतन करने से क्या है तो विषयान पुंस संगस्ते सुपजाए थे संग आसक्ति विषय में आसक्ति पैदा होगा। धैर्य तो विषयान पुंस संगस्ते सुपजाए थे संगा संजाए थे काम। संग से क्या होगा काम की उत्पत्ति होगी। संगा संजाते काम कामा क्रोध भी जाए थे काम से क्रोध उत्पन्न होगा। आक्रोधाद भवति सम्मोह कुछ ज्ञान नहीं रहे ज्ञान भ्रष्ट हो जाएगा सम्मोह। हाँ क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम सम्मोह से स्मृति का नाश हो जाएगा। स्मृति नाश से अपना जीवन का नाश हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कितने अच्छे शब्द से बता रहे कि संतोष रहना सीखे आध्यात्म। एक से चाणक्य पंडित ने चाणक्य ने एक सुंदर श्लोक लिखे त्रिविधम सदारे भोजने धने संतुष्ट त्रिशु कर्तव्यम सदारे भोजने धने। अपने पत्नी जैसे हो उसमें संतुष्ट रहे। सदारे भोजने जितना मिल गया उसी में प्रसन्न रहे। सदारे भोजने धने धन मतलब जो भी ठाकुर जी कृपा से जो धन प्राप्त हुआ है उसी में ही प्रसन्न रहे। सदारे भोजने धने संतुष्टम त्रिशु कर्तव्यम सदारे भोजने धने संतुष्ट नैव कर्तव्यम दाने जपे अध्ययने। तीनों चीजों में संतोष नहीं रहना चाहिए। दान कितना ही कर ले दान में प्रसन्न नहीं होने की मैं बहुत दान कर दिया करने की आवश्यकता नहीं। दाने जब अधिक से अधिक नाम जब आज 16 माला नहीं आज तो 64 माला भी कम पड़ गया उससे आगे चलना है। ऐसे एक लालच एक लोभ उत्पन्न हो जाए। दाने जपे और अध्ययने अध्ययन भी ऐसे इसी प्रकार है। आज भगवान की ही लीला सुने काले इसलिए जैसे आज ललिता सखी के जन्मदिन है आज ललित सखी के आविर्भाव तिथि है, उसके संबंध में 10 मिनट। तो संतोष रहना सीखना पड़ेगा, बिना संतोष से आप अपना आध्यात्मिक उन्नति प्रगति नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिक विकास के लालच से उसकी आध्यात्मिक प्रगति अस्त व्यस्त हो जाएगी। ऐसे दो बातें हैं, एक दारिद्रता और दूसरा नंबर है दारिद्रता दोष और लोभ, जो हमारे अवगुण है, ये जो संतोष गुण है ना, उसको नाश कर देते हैं। उसके समस्त सदगुण व्यर्थ हो जाते हैं दो चीज आने से, क्या क्या, एक दारिद्रता और लोभ आने से सारे सदगुण चला जाएगा। तो इसलिए दोनों से बचना है कि नहीं बचना है, तो सुनना है कि जस्ट यहीं पर छोड़ के चले जाएंगे, फिर ऐसे नहीं करना है। ये भागवत साक्षात श्री कृष्ण है हमारी करुणया आह संसारिणम करुणया आह पुराण गुह्यम, संसारी मानुष के कल्याण के लिए इस श्रीमद् भागवत पुराण को कहा गया। तो अगर इसको हम पालन नहीं करें तो हम इससे वंचित रह जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत कृपालु हैं कि हाय हम सब असंतोष के दोष से बच रहे हैं। अगर असंतोष बना रहे तो बहुत बड़ा घाटा है। हमारे पास जो भी है, हमारे पास रहने की व्यवस्था नहीं, पेड़ के नीचे सोए रहेंगे, संतोष में रहेंगे, भोजन पानी कोई ना कोई व्यवस्था हो जाएगी, थोड़ा मोड़ा जो भी पानी, और किसी प्रकार से संतोष रहना का सीखा मैंने, कभी शिकायत ना करें मुझे ये नहीं मिला, बहुत मिला। ठाकुर जी धाम में रहने के बास मिले, सबसे बड़ी कृपा है। हमेशा कृपा के प्रति ध्यान रखें, कभी किसी के प्रति दोषारोप ना करें। अगर दोष अवगुण देखना है, अपने की तरफ देखना है, अपने को ही अपना में जो अवगुण है इसी को ही देखना है, और जो दूसरे का भी छोटा सा भी गुण। भाई जी हनुमान दास पोद्दार जी एक बड़ा सुंदर बात है लिखे, श्लोक तभी याद रहे इस समय, उन्होंने लिखे हैं कि उनने जो छोटो मात्रा में छोटा गुण आपका दर्शन हो रहे हैं, कोई किसी छोटा सा गुण दिखाई पड़ रहा है, उसको बड़ा करके माने, अपने में बड़ा गुण को भी छोटा करके देखें। इसमें श्लोक है, तो हमें से दूसरे के छोटा गुण को पर्वतीकृत पहाड़ के समान, पर्वत के समान दर्शन करें। किसी ने ब्रज में आए, भगवत प्रसाद पाए, तुलसी जी के प्रणाम के परिदक्षिण करें, अरे बहुत आपने बहुत बड़ी सेवा की धाम में आकर। तो इस प्रकार से इससे सीखना। और अगर कोई पंडित है, बहु लिख रहे पंडित बहु राजा, हे राजन, कोई बहुत बड़ा पंडित है, अनेक पंडित ऐसे हैं, बहुत पंडित है, बड़े बड़े पंडित है, संशय को छेदन करने वाले हैं, आपके सारा संशय छेदन कर देंगे। और सदस्य पतयो, सभापति भी सभापतित्व करने वाले, सभा में सभापतित्व करने वाले, लीडर होने वाले, ये अगर लोग के ग्रसित हो जाए असंतोष के कारण, ये भी नरक में चला जाएगा। बड़े होते हुए भी, बड़े गुण से गुणान्वित होने पर भी असंतोष के कारण पतंती अधः। सदस्य मैंने सभा के पति पतय सभापति लोग भी नरक में चले जाएंगे। किस कारण से? असंतोष के कारण से। तो दो चीज से बचना है, एक दारिद्रता और दूसरा है लोभ। अगर भक्तों में दारिद्रता है, एक गुण है, भक्तों में दारिद्रता है, एक बड़ा गुण है। काल गौरांग प्रभु सुना रहे थे ना कि सबसे बड़ा दरिद्र कौन है? सुदामा, उसका अहंकारता में सबसे बड़ा दरिद्र है, हाँ? और भगवान ने उसका सबसे बड़ा धनी बना लिया, और सबसे बड़ा बलि महाराज सबसे बड़ा धनवान है, उसको सबसे बड़ा भिखारी बना दिया। तो इसीलिए एक जो भी संपत्ति है, जो भी व्यवस्थाएं है, उसी में ही प्रसन्न रहे। आज किचन में गया, भोजन नहीं मिला, दाल मिला, थोड़ा राइस मिला, दोस्तार अपना ठाकुर जी बहुत कृपा के तो मिला था। अगर नहीं मिला, पानी से ही प्रसन्न रहे, आज अच्छा से भजन करेंगे, किंतु ये मन इतना बदमाश है, इसको समझाना भारी भारी पड़ जाता है, दूसरे पर टोकने रोकता नहीं है, आज इतना बड़ा है, मैंने बहुत कुछ कहने लगता है, तो इसलिए बड़े सावधानी से बात है, मैंने कम से कम मतलब हमें से एक एक बात पर ध्यान रखें, कहाँ कहाँ हमारे गलती है, उस गलती को सुधारना। पहले महात्मा लोग क्या करते थे, दिन भर का जो सेवा किया उसका समीक्षा करते, कहाँ किसको मन में दुख दिया, कहाँ किसका कहाँ गलती हुई, इस पर विचार करते थे, उसका चर्चा भी होती थी, इस पर उसको उस पर ध्यान रखते थे कि इस प्रकार की गलती ना हो। तो आज इस असंतोष से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ललिता सखी शरण में जाना पड़ेगा। अगर ललिता सखी कृपा कर दे तो आसानी से इस दोष से बच जाएंगे। ललिता सखी ये अष्ट सखी में अन्यतम है, प्रधान प्रधान सखी है, परम पृष्ठ सखी है, और ललिता विशाखा चंपकलता इंदुलेखा रंगदेवी सुदेवी चित्रा ये आठ प्रधान सखी है। ये आठ प्रधान सखी ये समस्नेह है, समस्नेह सखी ये हमेशा कृष्ण राधा कृष्ण को समान स्नेह करते, सभी लोग सभी सखी बने। ये सब गोपी राधा रानी के हैं, इस प्रकार के अभिमान रखते हैं। ललिता सखी राधा रानी से बड़ी है, किंतु यहां दो दिन मनाते, दो दिन की बड़ी दिखाते, किंतु ग्रंथ में लिखा है 27 दिन के ललिता सखी बड़ी है, 27 दिन। ललिता सखी की उम्र है 14 साल 8 महीना और 27 दिन के हैं, 14 साल 8 महीना और 27 दिन। अच्छा, प्रेम प्रेमाभिमान है, प्रेम के अभिमान से राधा को हमने बस में रखते हैं और कृष्ण को झुकाते हैं। राधा रानी ललिता हमेशा कृष्ण को झुकाते रहते हैं, झुको यहाँ तब आप राधा रानी से मिलने देंगे, हैं सबसे हमसे टोकते थे, टोकने में मास्टर है। फिर ललित सखी अधिक प्रखर है, प्रखर कहा जाता है, और अंग कांति जो है गोरोचना, गोरोचना के समान है, गोरोचना जैसे पीला थोड़ा काला के गोरोचना के रंग के हैं, और इनका वसन मयूर पिछ, मयूर में जो सिखी पिछ, मयूर में जो विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के रंग है, इसी प्रकार से उनका वसन वस्त्र है। माता का नाम शारदी, पिता का नाम विशो, और पति का नाम भैरव, पति का नाम भैरव, इनका घर कहाँ, जावट में, याद रहेगा। माँ का नाम शारदा, पति पिता का नाम विशो, पति का नाम भैरव, घर जावट में, जावट में उनका ये है, किंतु ऊंचागा में से बड़ी हुई होगी पहाड़ी में, यहाँ जावट लिखा है ग्रंथों में, जैसे राधा रानी का जन्म है रावेल, किंतु बरसाने में बड़ी हुई। अच्छा, एक श्लोक आप लोग हमारे साथ बोलिए, राधा रानी के प्रणाम, ललिता के प्रणाम मंत्र है, राका सुधा किरण मंडल कांति दंडी तुंड श्रियम चकित चारु चमुक नेत्रम राधा प्रसादना विधाना कला प्रसिद्धम देवीं गुणै सुललितम स्मरामि सुललितम ललितम स्मरामि देवी देवीं गुणै सुललितम ललितम स्मरामि। इनके शोभा का वर्णन करें, शोभा मुख शोभा पूर्ण चंद्र मंडल के समान है। कांति, अच्छा इनका जो चंचल नेत्र है, राधा रानी के वसन आभूषण धारण कराते हैं, राधा रानी के वसन धारण कराते हैं ललिता सखी। और बेनी अशेष स्त्री जनोचित गुण राशि ललिता देवी का नमस्कार है। ललिता देवी ध्यान है, गोरोचना बपु भी विडम्बित सुबेनिम मयूर पिछ वसनम शुभ भूषणा भूषणाढ़ तांबूल सेव करमम ब्रजराज सोनो श्री राधिका प्रिय सुखी ललितम स्मरामि। शरीर का कांति है गोरोचना का, सुंदर विन्नस्त केशवास है, मयूर पिछ चिन्हित वसन है, परिधान करते सुंदर भूषण भूषित होकर श्री कृष्ण तांबुल सेवा में रत रहते, राधा प्रिय सखी ललिता की स्मरण करते हैं। राधा के प्रिय सखी श्री ललिता को मैं स्मरण करता हूँ। सखियों का मध्यस्थता करते हैं, जो राधा कृष्ण जो प्रेम कलह अथवा संधि मिलाने का काम कौन करते हैं? ललिता सखी। राधा कृष्ण के प्रेम कला है, वहाँ ललिता एंट्री कर लेते हैं अपने को, और वहाँ जाके अच्छा से माने, और सबसे ललिता का एक विशेष गुण है, वो चटकुली बहुत बोलते हैं, चटकुली है बहुत, चटकुली बोल के सबको हंसाते हैं, हाँ बहुत ये थे, बहुत माने बोलने में प्रखर है, सबको मैंने हंसा के रखते हैं। और ललिता सखी पुष्प अलंकार छत्र सैया कुंज भवन आदि का निर्माण में सुदक्ष है, छत्र सैया कुंज भवन आदि निर्माण में सुदक्ष है, और इंद्रजाल आदि रचना में और चटकुली में सुपंडिता है। इंद्रजाल माया रचना करने में और कैसे कैसे फंसाना है, हमेशा लक्ष्य रखते कि किस प्रकार से श्याम सुंदर को राधा जी के चरण में झुकाए, और राधा जी को हमेशा बोल कर रखते हैं, कभी मतलब हमेशा मान कर सिखा दे, मान कैसे वैदिक दी मान, और इसको शिक्षा देते कैसे मान करना है। राधा जी जैसे एक बार ललिता जी एक झूला झूला झूलन व्यवस्था की, तो राधा जी के आने में देर है, तो श्याम सुंदर ललिता जी के साथ बैठ करके झूला झूलें, इसी से राधा जी को मान हो गया कि मैं तो देखा आपने किसी के साथ झूला झूल रहे थे। ये छोटी छोटी बातों से राधा जी कभी कभी प्रसन्न होकर आदेश भी करते अपने प्रियतम श्याम सुंदर को सुखी करें, ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। और राधा ये जो ललिता सखी है इसको अनुराधा कहा जाते हैं, अनुराधा ललिता जी की और एक नाम अनुराधा। और ललिता जी कलियुग में स्वरूप दामोदर के रूप में आए हैं, और ललिता जी की 8 सखी प्रधान है, जैसे ललिता जूत है ना, जैसे हम लोग रूपानुग हैं, रूप गोस्वामी ललिता के अधीन में है, रूप मंजरी ललिता जो मंजरी स्वरूप है, तो रूप मंजरी ललिता के पास जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा, इसी एक लाइन है। तो ललिता के जो सखी है ये है रोती कला रत्न प्रभा कलहंसी कलापिनी सुभद्रा भद्र रेखा सुमुखी धनिष्ठा, ये है 8 प्रधान सखी है ललिता को सेवा करने का। लड़ते जगह आठ सुखी अष्ट सुखी सब सुखी होगा, प्रधान जो आठ सुखी है सबका आठ आठ सुखी है। तो हम सब जो गौड़िया हैं, एक गौड़िया सब रूप गोस्वामी के अनुसार हम सेवा करते हैं, तो रूप गोस्वामी ललिता के रूप मंजरी जो एक्चुअली यहाँ रूप गोस्वामी साधक अवस्था में रूप मंजरी और सिद्ध अवस्था में रूप मंजरी। साधक अवस्था में हम जब साधक है हम रूप गोस्वामी का अनुसरण करेंगे, जब सिद्ध अवस्था में पहुंच जाएंगे तब रूप मंजरी के अनुसार सेवा करेंगे, यह नियम है। तो इसीलिए आज के श्लोक से विशेष शिक्षण ये है कि किस प्रकार से असंतोष से बचे, हमेशा संतोष रहे, मन को संतोष रखने का शिक्षा दे। संतोष रखने का सरल उपाय कि दीनहीन होकर प्रभु का नाम पुकारे, अमानेना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। महाप्रभु लीला में कोई बड़े बड़े विद्वान हैं, जैसे एक भागवत टीका लिखे, बल्लभाचार्य, उन्होंने कहा महाप्रभु बार बार अनुरोध किए, प्रभु आप एक बार हमारा जो टीका लिखे मैंने इसको एक बार आप सुन लीजिए। तो महापुरुष सुना नहीं, महापुरुष जानते कि इनका इसमें अभिमान है, अभिमान को चूर करने के लिए नष्ट करने के लिए महापुरुष की टीका सुना नहीं। तो महापुरुष का एक ही तो स्वामी है श्रीधर स्वामी, मैं उसी का ही श्रवण करता हूँ और कुछ ग्रंथ नहीं। तो बहुत मैंने महापुरुष के एक ही लक्ष्य है, इसका जो अभिमान है, बड़े पंडित आज भी उनका टीका उपलब्ध है किंतु महापुरुष श्रवण किए नहीं, और गदाधर से जाकर जोर जोर के सुना रहे कि सुनिए सुनिए। गदाधर जानते थे कि महाप्रभु इसका रिजेक्ट किया तो मैं कैसे श्रवण करें, तो फिर जोर करके बैठे बैठे सुनाते, फिर कैसे करें कि महाप्रभु के भक्त भी हैं और महाप्रभु इससे नाराज भी हैं। तो फिर धीरे धीरे से जैसे जैसे हो बाद में उसको पता चला, फिर सभी वैष्णव को घर में बुलाकर प्रसाद पाए और बाद में उसको ठीक कर लिया कि नहीं अभिमान के चलते इसको अभिमान महाप्रभु अभिमान को नष्ट करने के लिए आपकी जो जो रचना जो टीका है इसको श्रवण किए, तो फिर अपना दैनत को ग्रहण किए। तो हम सब एक ही लक्ष्य है कि अमानेना मानदेना कीर्तनीय सदाहरे, त्रिनादपि सुनिचेना तरुरपि सहिष्णुना अमानेना मानदेना कीर्तनीय सदाहरे। इस मंत्र को रोज स्मरण करें कि मुझे इस स्थिति पर है, इस स्थिति को पहुंचाने के लिए सभी संतों के चरणों में सिर झुकाना पड़ेगा, सभी संतों से आशीर्वाद लेना पड़ेगा। हमेशा अपने को दीन भावना में रखें, हमेशा अपने को, अगर हम अपने को सोच ले कि हम बहुत बड़ा बन गए तो हम आपको बड़ा नहीं बना सकते, अगर हम सोचे कि नहीं मैं बहुत छोटा हो मेरा जप बहुत कमजोर है तो हम सुधार सकते हैं। वैष्णव से चरण में बैठकर कैसे हमारा जप सुधारे, कैसे और अच्छा से अच्छा प्रभु का नाम जप कर सके, कैसे वैष्णव का महाप्रभु शिक्षा देते जीवे रुचि नामे दया वैष्णव सेवन, तीन चीज शिक्षा देते हैं। तो तीन चीज अगर हम सब पालन करें तो ये जो असंतोष गुण ये नष्ट हो जाएगा, किसी प्रकार से असंतोष को नष्ट करना पड़ेगा जैसे तैसे हो। जिसमें संतोष आ गया ऐसे महापुरुष का संग करना, जिसमें संतोष गुण है ऐसे संतोष चित्त महापुरुष का संग करना पड़ेगा, तब जाकर उस गुण हमारे अंदर आ जाएगा। संग का बड़ा प्रभाव है, जैसे विषय का संग करे, विषय पुरुष का संग करे और विषय रंग चढ़ेगा, अगर अच्छे महापुरुष का संग करे उसका रंग चढ़ेगा। तो इसलिए संग दो चीज से ध्यान रखें, एक खान पान और एक संग। खान पान में भी अगर कुछ गड़बड़ है तो आपका चित्त मलिन कर देगा, और संग का प्रभाव भी अगर ठीक ना हो तो आपका चित्त मलिन हो जाएगा। दो चीज से सावधानी रहे, भले भूखे रह जाएंगे अगर आपको पता चला कि बेईमानी का पैसा है, खून का पैसा से खिला रहे तो बिल्कुल नहीं खाना हुआ और सीधा पानी पी के उस दिन भजन कर लेना, भजन बच जाएगा। अगर आप सोच रहे बहुत अच्छे से माल मिल रहे हैं तो धोखे में पड़ जाएंगे, भजन रुक जाएगा। कहने का उद्देश्य यही है, भजन को बचाना है, भजन को बचाने के लिए दो चीज पर ध्यान रखें कि एक संग और एक भोजन। भोजन अगर अपवित्र हो जाए तो चित्त मलिन हो जाएगा, भजन होने नहीं देगा, भजन में बार बार बाधा आएगा। फिर नाम प्रभु से प्रार्थना करके ये रास्ता खोलना पड़ेगा कि आज मैंने जो गलती किया दोबारा नहीं करेंगे। फिर धीरे धीरे से संतों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से ये रास्ता फिर खुलेगा। तो चाहे समय अधिक हो गया, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, निताय गौर प्रेमानंदे, ललिता सखी की। आज आप लोग ऊंचा गांव भी जा सकते हैं, बहुत दिव्य स्थान है।